वसुधा के विला में वसुधा अभिमन्यु और इशिका के साथ अच्छा समय बिता रही थी। ब्रेकफास्ट टेबल पर उन दोनों के बीच कुछ अच्छे पल भी हुए, लेकिन इस बीच पूरी राजवंश फैमिली वहां पहुंच चुकी थी। उनके साथ में आयशा भी थी। नक्श की मॉम उर्वशी जानबूझकर आयशा की तारीफ कर रही थी और सारी बातें बढ़ा चढ़ाकर बता रही थी। उर्वशी ने इशिका को पहले ही साइड कर दिया था, फिर उसने आयशा को अपने पास वाली चेयर पर बैठने का इशारा किया। आओ आयशा, ये दादी के साथ तुम्हारा पहला ब्रेकफास्ट है, सो एन्जॉय। ये हमारी फैमिली में सबसे बड़ी है, तो सब इनसे बहुत प्यार करते हैं और रिस्पेक्ट भी, उर्वशी ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाद उर्वशी ने इशिका को चिढ़ाते हुए कहा, ओह आई एम रियली सॉरी मिस सिंघानिया, मैंने आपकी तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया, आपकी जगह आयशा ने ले ली है। इशिका ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया था। इशिका ने उर्वशी की बात का जवाब देने के बजाय अपना ट्विटर मैसेज चेक करने लगी। उसे प्रिंस ने मैसेज किया था। प्रिंस ने लिखा था, मिस एम, मेरे पास एक सीक्रेट है और अब वो मैं दुनिया के सामने रिवील करने जा रहा हूँ। आयशा सिंघानिया वो लड़की नहीं है जिसने माहिर दास को पकड़वाया था। इनफैक्ट वो तो उसके साथ मिली हुई है और मेरे पास इसके सबूत भी हैं। आप सरप्राइज के लिए तैयार रहिएगा। प्रिंस काफी जिद्दी था। पहले वो इशिका के पीछे पड़ गया था तो अब आयशा के। इशिका ने भी उसे रोकने के बजाय थम्स अप का साइन भेजा। इशिका यही चाहती थी कि अब आयशा की सच्चाई सबके सामने आ जाए। इशिका का ध्यान मोबाइल में लगा हुआ था, तभी आयशा ने उर्वशी से कहा, आंटी आप इशिका की बात का बुरा मत मानिएगा कि वो आपकी बात का जवाब देने के बजाय अपने मोबाइल में लगी है, उसका हमेशा से यही है, उसे बड़ों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। इशिका हैरान रह गई। उसने उर्वशी के चेहरे की तरफ देखा तो वो गुस्से से उसे घूर रही थी। उर्वशी ने सख्त शब्दों में कहा, मिस सिंघानिया, क्या सच में आपकी माँ ने आपको कुछ नहीं सिखाया कि अपने से बड़ों के साथ कैसे बिहेव किया जाता है? आपसे बड़ा आपसे बात कर रहा है लेकिन आप उन्हें इग्नोर कर रही हैं। उनकी बातें सुनकर अभिमन्यु को गुस्सा आने लगा। वो जवाब में कुछ कहता उससे पहले इशिका खुद ही बोल पड़ी। उसने कहा, क्या कहा आपने अभी? उर्वशी ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना कि आपकी जगह आयशा दादी के पास में बैठे, आखिर उन्हें काफी सारी बातें करनी है और वो इस घर की होने वाली बहू है। इशिका ने बिना कुछ कहे बस सिर हिलाया। उर्वशी को लगा कि इशिका को बुरा नहीं लग रहा, लेकिन तभी इशिका ने पूरी सख्ती से कहा, आई एम सॉरी पर मुझे बुरा लग रहा है, आपकी जगह कोई और ले लेता है तो बुरा लगना चाहिए। इशिका की स्ट्रेट फॉरवर्डनेस देखकर उर्वशी हैरान रह गई। तभी इशिका ने हाथ बांधकर कहा, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मुझमें तमीज नहीं है कि बड़ों के साथ कैसे पेश आया जाता है, तो मेरे दिल में जो था मैंने बता दिया, मुझे आपकी बातें बुरी लगी। इशिका जानबूझकर अपनी ही जगह पर आकर बैठी जो वसुधा के ठीक पास में थी। उर्वशी ने वो जगह आयशा के लिए बनाई थी, वो तो हैरान रह गई। आयशा ने इशिका की तरफ से माफी मांगते हुए कहा, आंटी इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, इसकी माँ के बारे में आप जानती हैं ना, वो थोड़ी अलग बैकग्राउंड से आई हुई है तो उन्होंने इसे कुछ नहीं सिखाया। अब तो यही लग रहा है कि इसे सच में अपने से बड़ों से बात करने की तहजीब नहीं है, उर्वशी ने जवाब दिया। अभिमन्यु बहुत सुन चुका था और अब वो चुप नहीं रहने वाला था। बात इशिका की थी तो उसे चुप रहना भी नहीं था। अभिमन्यु ने उर्वशी की तरफ सर्द निगाहों से देखते हुए कहा, लगता है तहजीब तो आपको भी नहीं सिखाई गई, तभी आपको नहीं पता कि घर आए मेहमान के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। उर्वशी ने खुद जवाब देने के बजाय प्रशांत की तरफ देखा। प्रशांत ने अभिमन्यु को डांटते हुए कहा, अभिमन्यु ये क्या चल रहा है, तुम अपनी भाभी से ऐसे बात नहीं कर सकते हो। अभिमन्यु ने कोई जवाब नहीं दिया। वैसे भी प्रशांत और उसके बीच में इतनी खटास थी कि वो दोनों एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखते थे। वसुधा ने इस ड्रामे के बीच में जोर से टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम सब लोग यहाँ आए हो ही क्यों, तुम सबको यहाँ ब्रेकफास्ट करने के बजाय बहस और लड़ाई झगड़ा ही करना था तो कोई और टाइम चुन लेते, कोई भी मेरी बहू से इस तरह बात नहीं करेगा, वो मेरे अभिमन्यु की पत्नी है। सब लोग हैरानी से इशिका और अभिमन्यु की तरफ देखने लगे। तभी आयशा ने उन्हें समझाते हुए कहा, एक्चुअली दादी को बातें याद नहीं रहती और उन्हें यही लगता है कि मिस्टर राजवंश इशिका के पति हैं। उर्वशी ने इशिका का मजाक बनाते हुए कहा, दादी को तो गलतफहमी हो गई लेकिन बाकी लोगों को तो पता है ना कि उनकी औकात क्या है। समझ नहीं आ रहा अभिमन्यु तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो, अगर तुम्हारी पत्नी वापस आई और उसे इन सब के बारे में पता चला तो उसे बुरा लगेगा। अभिमन्यु ने इशिका की तरफ देखा और बेरुखी से कहा, उसे बुरा नहीं लगेगा। उर्वशी अभिमन्यु को और भी सुनाना चाहती थी लेकिन वसुधा ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, मैं तुम्हारे इरादे अच्छे से समझती हूँ, तुम इन सबको लेकर नाश्ते के लिए तो बिल्कुल नहीं आई हो, जिस इरादे से आई हो जल्दी बोलो और निकलो यहाँ से, हम सबका मूड खराब करने की जरूरत नहीं है। उर्वशी ने उसकी बात पर सिर हिलाया और फिर अपने पति नकुल को इशारा किया। नकुल ने सब समझते हुए वसुधा से कहा, आयशा इतने अच्छे खानदान से बिलोंग करती है, उसकी यूनिवर्सिटी ग्रेड्स भी काफी अच्छे हैं, बिजनेस में भी सही जा रही है, ऊपर से अब उसे पुलिस भी सबके सामने सम्मानित करेगी, तो आपको नहीं लगता कि आपको भी इनाम के तौर पर उसे कुछ देना चाहिए? आखिर वो इस खानदान की होने वाली बहू है। हाँ, तो तुम्हारे बेटे की पत्नी बनने वाली है, तो तुम उसे इनाम दो, वसुधा ने सिर हिलाकर कहा। वसुधा के आगे नकुल की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसने उर्वशी की तरफ इशारा किया। अपने पति की नाकामयाबी को देखकर उर्वशी का मुंह बन गया। फिर उसने बातचीत को आगे बढ़ाते हुए कहा, दादी, हमने आयशा को गिफ्ट दे दिया है, लेकिन आपको भी तो कुछ देना चाहिए। आप इस फैमिली की सबसे बड़ी मेंबर हैं। वसुधा को अभी भी कुछ समझ नहीं आया। वो चिढ़ते हुए बोली, देखो, जो कहना है साफ साफ कहो, मुझे तुम लोगों के इशारे समझ नहीं आ रहे हैं। जब अभिमन्यु की शादी हुई थी, तब आपने उसकी पत्नी को 5% शेयर दिए थे, तो क्या आप आयशा को 2% शेयर भी गिफ्ट के तौर पर नहीं दे सकती? इस बार उर्वशी ने सीधे सीधे कहा। वसुधा ने गहरी सांस ली और आयशा को देखते हुए कहा, मैं इसे कुछ नहीं देने वाली हूँ। लेकिन क्यों? उर्वशी ने चौंकते हुए पूछा। क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है, वसुधा ने सीधे सीधे जवाब दिया। आयशा के चेहरे के भाव सख्त हो गए थे। वो नफरत भरी निगाहों से वसुधा को घूर रही थी, लेकिन फिलहाल उसे शांत रहना था। आयशा ने मासूम सा चेहरा बनाया और धीमी आवाज में कहा, हाँ, मैं जानती हूँ दादी, मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, पर अब मैं सुधर गई हूँ। अगर आप मुझे नापसंद करेंगी तो मैं इस फैमिली में कभी अपनी जगह नहीं बना पाऊंगी। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। बड़ी दादी, आप इस तरह? नक्श काफी अग्रेसिव होकर बोल रहा था, लेकिन जैसे ही अभिमन्यु की तरफ उसकी नजर गई तो वो चुप हो गया। अभिमन्यु की निगाहें काफी सर्द थीं और उसके आगे वो कुछ नहीं बोल पाया। उर्वशी ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने इस बार बिना किसी झिझक के कहा, दादी, आप हमारे साथ पार्शल नहीं हो सकती हैं। आप अभिमन्यु को हमेशा से पसंद करती हैं। जब मैं शादी करके आई थी तब मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन वही जब अभिमन्यु ने शादी की तो आपने उन्हें गिफ्ट के तौर पर 5% शेयर दे दिए थे। आपने मेरे साथ जो किया मैं उसके लिए बुरा नहीं मानूंगी, लेकिन मेरी बहू के साथ ऐसा मत कीजिए दादी। आपको सभी बच्चों को एक जितना प्यार करना चाहिए। बोलते हुए वो आंसू बहाने लगी और प्रशांत की तरफ देखा।
प्रशांत ने गहरी सांस लेकर कहा, उर्वशी बिल्कुल ठीक कह रही है। मॉम, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। पहले आपको आयशा पसंद नहीं थी, हमें कारण समझ आता था, लेकिन अब उसकी वजह से राजवंश खानदान की इज्जत भी बढ़ेगी, तो आपको उसे गिफ्ट के तौर पर शेयर दे देने चाहिए। वो सब लोग अलग अलग तरीके से वसुधा को प्रेशराइज करने लगे थे ताकि वो आयशा को गिफ्ट के तौर पर 2% शेयर दे दे। इन सब के बीच इशिका के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने देखा तो प्रिंस ने एक वीडियो पोस्ट किया था जो आयशा की सच्चाई सामने लाने के लिए काफी था। इशिका ने उसे जल्दी से प्ले करके देखा। वीडियो के अंदर आयशा और माहिर एक दूसरे के पास सुनसान जगह पर बैठे हुए थे। वीडियो थोड़ा दूर से शूट किया हुआ था, इस वजह से उनकी बातें सुनाई नहीं दे रही थीं, पर धीरे धीरे कैमरा उनके पास जाने लगा। माहिर ने आयशा से घबराते हुए कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है आयशा, तुम बेवजह घबरा रहे हो। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है और वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बस तुम कोई गलती मत करना। अगर तुमने कोई गलती की तो हम दोनों ही फंस जाएंगे। वैसे भी तुमने कुछ गलत नहीं किया है, वो इंसान मरना ही डिजर्व करता था, आयशा ने प्यार से माहिर के गाल पर हाथ रखकर कहा। अचानक आयशा को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी तो वो चिल्लाकर बोली, कौन है वहाँ? आयशा और माहिर जल्दी से उठकर गए और उन्होंने प्रिंस को पकड़ लिया था। आयशा ने उसकी तरफ देखकर समझदारी से काम लेते हुए कहा, देखा तुमने, जो भी शूट किया है उसे डिलीट कर दो। तुम जितने पैसे मांगोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। आयशा जहाँ शांति से बात कर रही थी वहीं माहिर ने कहा, सोच लो, अगर वीडियो डिलीट नहीं किया तो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। ठीक है, मैं कर रहा हूँ डिलीट, प्रिंस ने कहा और उनके सामने वीडियो डिलीट कर दिया था। माहिर और आयशा नहीं जानते थे कि आजकल के कैमराज ज्यादा एडवांस हो गए थे। वीडियो डिलीट होने के बावजूद उसका डेटा किसी दूसरे डिवाइस में सिक्योर रहता था। वीडियो को पोस्ट करते हुए प्रिंस ने साथ में लिखा था, आयशा सिंघानिया झूठी है और साजिश में शामिल है। पुलिस को वो सबूत आयशा सिंघानिया ने नहीं बल्कि मैंने भेजे थे। वो बेशर्म लड़की इतना सब कुछ करने के बावजूद मेरे किए का क्रेडिट खुद ले रही है। वो हीरोइन नहीं, एक विलेन है। प्रिंस के ज्यादा फॉलोअर्स नहीं थे, इस वजह से उस वीडियो को ज्यादा लोगों ने नहीं देखा था। प्रिंस ने उसे मैसेज करते हुए ये रिक्वेस्ट की थी कि वो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आयशा की सच्चाई पता चले। हालांकि इशिका बिना सोचे समझे कोई भी वीडियो शेयर नहीं करती थी, लेकिन वो जानती थी कि वो वीडियो सच्चा है और आयशा की सच्चाई सामने लाना जरूरी था, इसलिए इशिका ने तुरंत उस वीडियो को शेयर कर दिया था। तुरंत ही उस वीडियो की रीच बनने लगी और सब आयशा को भला बुरा कहने लगे। इशिका ने मुस्कुराते हुए अपना मोबाइल रखा और ब्रेकफास्ट की तरफ देखा जो देखने में काफी टेस्टी लग रहा था। अब तक शेयर्स के बारे में लड़ाई होते हुए देखा ही था, आज सुन भी लिया। इन अमीर परिवारों का कुछ नहीं हो सकता, इनके चक्कर में पूरा ब्रेकफास्ट बर्बाद हो गया, इशिका ने धीरे से कहा। वो खुद से बातें कर ही रही थी कि अचानक उसकी प्लेट में किसी ने एक चॉकलेट पेस्ट्री रखी। इशिका ने नजरें उठाकर देखा तो वो अभिमन्यु था। उसने इशारे से इशिका को खाने के लिए कहा। इशिका ने एक नज़र इधर उधर देखा कि कहीं उन्हें कोई देख तो नहीं रहा। सब लोग शेयर्स की लड़ाई में उलझे हुए थे, किसी का ध्यान भी उनकी तरफ नहीं था। इशिका ने चुपचाप खाना शुरू कर दिया था। अभिमन्यु का ध्यान भी उसकी तरफ था जो सुकून भरी निगाहों से उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। इशिका को इंतजार था तो बस वो वीडियो वायरल होने का, तो वहीं टेबल पर शेयर्स की लड़ाई अब बढ़ती जा रही थी। वसुधा से अब कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और तेज आवाज में बोली, बस बहुत हो गया, सब यहाँ से निकल जाओ। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझ पर ये इल्जाम लगाने की? मैं भेदभाव कर रही हूँ। प्रशांत, तुम्हारे मुंह से भेदभाव की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। तुमने हमेशा अपने बड़े बेटे को सपोर्ट किया है, जबकि अभिमन्यु की तरफ कभी देखा तक नहीं। वो बचपन में बीमार था, तब तुम उसकी देखभाल करने के बजाय अपने बड़े बेटे के साथ थे, जिसे मामूली जुकाम हुआ था। जब अभिमन्यु शादी करके आया था, तब तुमने भी उसे शेयर नहीं दिए थे और यही कहा था कि मुझे वो लड़की पसंद नहीं है, इसलिए मैं उसे कुछ नहीं दूंगा। तो मेरा जवाब भी वही है, मुझे ये लड़की पसंद नहीं है तो मैं इसे फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। मॉम, तब और अब में बात अलग है। अभिमन्यु ने सबसे अलग शादी की थी और उसकी पत्नी को किसी ने देखा तक नहीं है, जबकि आयशा की एक अलग इमेज है। वो एक पब्लिक फिगर बन चुकी है, ऐसे में लोगों को पता चलेगा तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, प्रशांत ने बहाना बनाते हुए कहा। वसुधा का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने एक प्लेट उठाई और जमीन पर फेंकते हुए कहा, ठीक है, बराबर का मुकाबला करते हैं। तुम अभिमन्यु की पत्नी को शेयर दे दो, मैं इस लड़की को गिफ्ट में शेयर देने के लिए तैयार हूँ। प्रशांत मना करना चाहता था, लेकिन नकुल ने उसे इशारा किया। नकुल ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, फिर बराबरी का मुकाबला करते हैं। डैड को अभिमन्यु की पत्नी को शेयर दे देंगे, बदले में आपको भी उतने ही शेयर आयशा को देने होंगे जितने अपने अभिमन्यु की पत्नी को दिए थे। डैड ने उर्वशी को 2% शेयर दिए थे, तो अभिमन्यु की पत्नी को 2% शेयर मिल जाएंगे। बदले में आपको भी 5% शेयर आयशा के नाम करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने अभिमन्यु की पत्नी को भी 5% शेयर दिए थे। ना चाहते हुए भी वसुधा इस शेयर गिफ्ट करने के जाल में फंस चुकी थी। वहीं इन सब के बीच इशिका बेफिक्र होकर बैठी थी। देर थी तो बस राजवंश फैमिली के अपना मोबाइल चेक करने की, क्योंकि सोशल मीडिया पर आयशा का राज सबके सामने आ चुका था। इस लड़ाई के बीच आयशा की नज़र अचानक इशिका की तरफ गई, जो तिरछी मुस्कुराहट के साथ उसे ही देख रही थी। इशिका की स्माइल को देखकर आयशा के चेहरे पर परेशानी की बूंदें उभर आईं। इशिका ने उसे देखते हुए अपने मन में कहा, बस कुछ देर आयशा सिंघानिया, फिलहाल इस ड्रामे को एंजॉय करो, अगले आधे घंटे में नए ड्रामे का मजा लेगी। अभी तुम्हारे नाम पर शेयर मांगे जा रहे हैं, फिर देखते हैं यही राजवंश फैमिली तुम्हारे साथ क्या सलूक करती है।